जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर आपको खुश करना है तो उसके पेट से उसका रास्ता होकर जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे संकल्पों की, हमारे संकल्पों का प्रभाव हमारे भोजन पर जरूर पड़ता है। उसी प्रकार जब आप किसी व्यक्ति को वो भोजन देंगे खाने को, तो वो व्यक्ति आपको या तो दुआएं देगा या फिर उसके संकल्प बदलने लगेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति।
ओम शांति,
स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
धन्यवाद
भाई जी। जब हम बात करते हैं खाने की, खाना वैसे तो कहा जाता है कि आजकल तो लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा उस चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम व्यक्ति अगर बात करे तो वो टेस्ट के लिए खाते हैं। तो ये किस हद तक सही है टेस्ट के लिए अपने आहार को क्रिएट करना?
जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का एक मुख्य तत्व टेस्ट रहता है। हमारा भोजन, जैसे हम बात कर रहे थे, सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, साथ में स्वादिष्ट भी होना चाहिए। लेकिन स्वाद के साथ साथ, स्वाद एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना बढ़ाना चाहो उसका लेवल उतना बढ़ा सकते हो, और जितना घटाना चाहो उतना घटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हम स्वाद के अगर अधीन होकर खाना खाएंगे तो हो सकता है वो स्वाद हमें कई बीमारियों की तरफ ले जाए।
करेक्ट,
स्वाद होना जरूरी है, लेकिन स्वाद कितना होना चाहिए और उस स्वाद के हम गुलाम हैं, उस आदत के गुलाम हैं, यानी हम अपनी जीभ के अगर गुलाम हैं तो वो सही बात नहीं है। हमारी जो जीभ है हम उसके मालिक हैं। जो आत्मा है वो एक राजा की तरह है, एक मालिक की तरह है, और जिसे हम, जिस चीज को स्वाद की अनुभूति होती है वो जीभ है, वो हमारा एक नौकर है
जी।
अब आप देखिए, नौकर राजा का हुक्म मानता है, मालिक का हुक्म मानता है, जो मालिक कहेगा नौकर को मानना पड़ेगा। अभी ऐसा आपने सुना कि नौकर का हुक्म राजा या मालिक माने?
नहीं,
ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नौकर को तनख्वाह दी जाती है, नौकर को राजगद्दी नहीं दी जाती, नौकर को मालिक उत्तराधिकारी या मालिक नहीं बनाया जा सकता, उसको उसके काम के लिए उसको पे मिलती है।
बिल्कुल।
पर जब खाने पीने का मामला आता है तो इससे उल्टा हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जो चीज नहीं खानी चाहिए, जो हेल्थ के लिए सुटेबल नहीं है
वो खा लेते हैं।
मान लो किसी को डायबिटीज है, वो हर रोज उसके इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है, लेकिन उसको मीठा खाने की बड़ी आदत है, जहां कहीं गुलाब जामुन देखा, रसगुल्ला देखा, जलेबी देखी, खा ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेस्टी तो थी चीज, पर वो टेस्ट के गुलाम था, वो टेस्ट को छोड़ नहीं सका, इसलिए वो बीमारी और बढ़ेगी। अब हमारा खान पीने के मामले में ऐसा हो रहा है कि हम नौकर का हुक्म मान रहे हैं। नौकर कहता है मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए, मैंने चॉकलेट खानी है जीभ, और आत्मा जो राजा है वो नौकर की जी हजूरी करने लग जाता है और उसका हुक्म मानते हुए सारी कर्मेंद्रियों रूपी दूसरे नौकरों को चॉकलेट लाने के लिए यूज करने लग जाता है। और चॉकलेट जब आ जाती है तो उसको खुशी होती है कि मैंने अपने नौकर जीव का हुक्म मान लिया।
बिल्कुल।
तो इसलिए नौकर के गुलाम नहीं हमें बनना है। नौकर कहे मुझे मीठा दो तो आप उसे समझाओ, बार बार याद दिलाओ कि तुम नौकर हो, मैंने तुम्हारा हुक्म नहीं मानना है, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। वो कहेगी जी मुझे मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, आप उसको कहो नहीं मीठा नहीं मिलेगा, वो दोबारा कहेगी मीठा चाहिए, आप कहो नहीं मिलेगा,
तभी वो
धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी और आप मालिकपन का एहसास कर सकेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर साहब। जब हम बात करते हैं क्या कहा जाता है ऐसे कि नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा नहीं होता है, जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि नॉन वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम किसी जीव को मार कर उनके लाश को हम खा रहे हैं, जिस आपके ही शब्दों में अगर हम इस बात को कहें तो
जी, जी।
लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे चलने की ओर, जब हम चलते हैं तो कई सारे जो कीटाणु होते हैं वो भी तो मर जाते हैं, कई सारी चींटियां होती है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई बार हम जब सांस भी लेते हैं ऐसा कहा जाता है कि तभी भी हवा में जो कीटाणु होते हैं वो हमारे अंदर जाकर के मर जाते हैं। तो ये इस चीज का आप क्या सलूशन देंगे, क्या हम चलना और सांस लेना भी छोड़ दें?
जहां तक नॉन वेज खाने की बात है, हमने पिछली कड़ियों में भी इसके ऊपर काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की। एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को जानता है कि किसी की हत्या करके उसे खाना गुनाह है, हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। एक सिंपल सी बात थी जिसको काफी एक्सप्लेन हमने किया। अब आपने कहा कि जब हम चलते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब भी कुछ लोग मारे, कुछ जीव जंतु मारे जाते हैं, चींटियां मारी जाती हैं। अब आप देखिए, जब आप चल रहे हैं तो आप जानबूझ के बाय इंटेंशनली तो नहीं मार रहे किसी को।
बिल्कुल।
वो कहीं इतने झुंड जा रहे हैं चींटियों के रास्ते में, आप चल रहे हैं, हाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ चींटियां हैं और आप जानबूझ के वहीं पर ही उन रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर पांव रखते हैं, तो जरूर गुनाह है, जरूर पाप है। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण, या समझो अब इतनी सारी चीजें हैं धरती पे, आपका पांव तो आपको रखना पड़ेगा, उड़के तो आप जाएंगे नहीं, तो वो अगर हो जाता है तो उसको उस गुनाह की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता जो एक जीव हत्या आप जानबूझ के जो दिखाई दे रहा है, जो आपको पता है आप इंटेंशनली उसको मार रहे हैं। आप अनायका जी एक बात ध्यान से सुनिए, एक सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति क्या कभी कसाई बनना पसंद करेगा?
बिल्कुल नहीं।
बुचड़खाना, कसाई घर, ये शब्द ही लोगों को घृणा देते हैं। हम खुद तो क्या, हमारे दोस्त भी हम ये नहीं चाहते कि हमारा दोस्त कोई जल्लाद बन जाए, कोई कातिल बन जाए, कोई कसाई बन जाए। तो ये शब्द ही इतने घृणा वाले हैं, नफरत वाले हैं। आखिर वो कसाई बना किसके कारण? कसाई उसको प्रोत्साहन किन लोगों ने दिया? वही जो नॉनवेज खाते हैं। आप किसी जज के पास भी चले जाइए, जज भी हर अपराध की एक जैसी सजा नहीं होती। मान लो किसी व्यक्ति ने कत्ल किया है, एक व्यक्ति इंटेंशनली कत्ल करता है, जानबूझ के कत्ल करता है, प्री प्लान्ड कत्ल करता है, उसकी सजा बहुत ज्यादा होती है। और एक व्यक्ति है जो गुस्से में आके कुछ कह देता है, कुछ कर देता है, गुस्से में आके दूसरे को मार देता है, सजा वहां भी है, लेकिन वहां सजा उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि इंटेंशनली कोई जुल्म करके आता है। इसलिए अगर हम चलते हैं, हमारे टकराने से हवा में कोई छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुछ नुकसान होता है, तो उसकी तुलना एक सिंपल जानवर जो भेड़ है, बकरी है या कोई और जानवर है, उसके गले काटने से कदापि नहीं की जा सकती।
प्रोफेसर साहब, अब मैं बात करना चाहूंगी एग्स की, अर्थात अंडे की। इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कई लोग कहते हैं कि एग्स नहीं खाना चाहिए, तो एग्स क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो एक तरीके से तो कितना प्रोटीनशियस होता है, उसमें कितना हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, तो हम क्यों नहीं खाएं एग्स?
ये भी बहुत सही सवाल आपने पैदा किया है कि एग को क्यों नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि एग का पर्पस क्या है, एग का मीनिंग क्या है, एग कहां से आता है, एग कौन देता है। नेचुरल सी बात है कि मुर्गी एग देती है, मुर्गी से ही एग निकल के आता है। अच्छा, अब मुर्गी एग क्यों देती है? अगर इस बात को हम सोचें तो मुर्गी एग अपने नए बच्चे को जन्म देने के लिए देती है,
जनरेशन बढ़ाने
के लिए और प्रजनन करने के लिए एग देती है। तो जो एक एग है उसमें एक नन्ही सी जान छिपी हुई है, उस नन्ही जान को एक बच्चा जान बनने से पहले, एक बच्चा बनने से पहले, एक चूजा बनने से पहले, इंसान इतना चलाक है कि उसने उस स्टेज तक वो आए उससे पहले ही उसको तोड़ के पका के खा, उबाल के खा लिया।
इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी आपने कहा कि एग के अंदर में जान तो आती नहीं है, जीव उसके अंदर तब तक क्रिएट नहीं होता, उससे पहले हम उसे फोड़ कर खा लेते हैं, तो ऐसे में तो बिल्कुल हम मार भी नहीं रहे हैं किसी चिड़िया को, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
ये तो उससे भी बड़ी बात है, एक है कि कोई जीवन जिसमें आ गया बच्चा बन गया उसको मारना वो तो गुनाह है ही है, वो तो एक गलत अमाननीय व्यवहार है ही, लेकिन अभी बच्चा बना ही नहीं और आपने उसके बीज को ही नष्ट कर दिया। अंडा तो बीज है उसका और आपने बीज को ही अपना भोजन बना लिया, तो ये तो और ही अमाननीय बात है, उसको खाना तो और ही एक घृणित काम हम जिसे कह सकते हैं उस तरह का काम है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अंडा हम अभी उसमें जीवन नहीं आया था हमने पहले ही खा लिया है, तो वो वही अमाननीय काम वही घृणित काम।
आप एकदम सही कह रहे हैं, जब हम बात करते हैं एग्स की, एग्स के अंदर भी जान होनी होती है और सबसे मेन बात अगर हम बीज को ही मार देंगे तो फिर फल तो निकलना बहुत दूर की बात है।
और दूसरी मेन बात कि जब मुर्गी से अंडा लिया जाता है किस प्रोसेस से उनको गुजारा जाता है, वो अंडे किस पर्पस के लिए थे और किस काम के लिए उनको हम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। जब मुर्गी अंडा देती है तो बहुत तड़प तड़प के उससे अंडे लिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंडे लेने के लिए वो विधि अपनाई जाती है, तो जो चीज तड़प तड़प के दी जाए बड़े दुख में पेनफुल स्टेट में दी जाए तो वो वाइब्रेशन जो हमने देखा कि वो वाइब्रेशन दुख के, वो वाइब्रेशन पेन के, वो मुर्गी के जो हार्ट की फीलिंग है वो सारे दुख के वाइब्रेशन उसके अंडे में भी तो जाएंगे। अच्छा। और जो अंडा खाएगा उसके अंदर भी वही दुख, वही अशांति, वही भय, वही पीड़ा आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अंडे नहीं खाने चाहिए। और अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लीजिए कि जैसा आपने कहा कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, नो डाउट उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो सकता है, लेकिन आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जितना प्रोटीन पहले कहते थे अराउंड 150 ग्राम आज पर डे कहते थे, आजकल कहते हैं 45 ग्राम भी बहुत है, उतना मिल गया तब भी बहुत हमारे लिए सफिशेंट है। तो इतना ज्यादा प्रोटीन हम अंडे का अगर ले रहे हैं वो यूजलेस है। और साथ में आप देखेंगे कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है जो नुकसान हमें देता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है अराउंड 213 मिलीग्राम जो बटर के 8-9 चम्मच के बराबर होता है। तो इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमें हार्ट डिजीज पैदा करेगा, शुगर की प्रॉब्लम लाएगा, हाई बीपी क्रिएट करेगा, साथ में नो फाइबर, अंडे के अंदर फाइबर ही नहीं होता जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल शून्य अमाउंट में होते हैं। इसलिए केवल हम सोचें कि वो प्रोटीन देता है इसलिए हम एग लें, प्रोटीन के लिए तो दूसरी चीजें भी बहुत सी हैं, बहुत से दालें हैं, मेवे हैं, मक्खन है, दूध है, पनीर है, कई चीजें हैं जिनसे हमें जितना प्रोटीन चाहिए उतना उन चीजों से मिल जाता है। इसलिए हम केवल ये दलील दें कि हमें प्रोटीन चाहिए इसलिए हम एग्स ले रहे हैं, ये कहना सही नहीं होगा।
जी प्रोफेसर साहब, ऐसा भी कहा गया है कि आजकल अगर हम देखेंगे ऐसे कहते हैं लोग कि मुर्गियों मतलब बहुत ज्यादा संख्या उनकी बढ़ जाएगी अगर हम एग्स नहीं खाएंगे, तो क्योंकि अगर हम उन्हें तोड़कर खा लेते हैं तो शायद वो कुछ मात्राएं कम हो जाती है, नहीं तो बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी। ये किस हद तक सही है?
ये भी एक गलत तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली बात है। क्या हम सारी मुर्गियों के ठेकेदार लगे हैं कि हम ये सोचें कि अगर मुर्गियां अंडे नहीं खाएंगे तो मुर्गियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी? ऐसे तो कॉकरोच भी बहुत हैं, छिपकलियां भी बहुत हैं, चींटियां मक्खियां भी बहुत हैं, हम सोचे अगर उनको हम ना खाएं तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये ठेका हमें किसने दिया है, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्यों हमें फालतू की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके बैठे हैं जब किसी ने काम हमें दिया ही नहीं है कि आप मुर्गियों की संख्या कम करें, तो वे बजाय हम ये काम क्यों लेके इस काम को कर रहे हैं।
जी
अगर काम करना ही है, ठेका लेना ही है, तो बहुत सी चीजें और भी है जो बढ़ रही है उनका भी ले लीजिए।
बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आजकल ये एक नया तरीका निकाला है लोगों ने जो कि एग्स खाते हैं, वह इनफर्टाइल एग्स, जिसे हम दूसरी भाषा में वेजिटेरियन एग्स भी कह सकते हैं। ये जिस तरह से आप कह रहे थे कि उसके अंदर से हम बीज को मार देते हैं, बीज से मुर्गी नहीं निकल पाएगी, ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंप्लीफाइड केमिकली बने हुए एग्स, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको?
ये जो आपने कहा कि केमिकली बने हुए एग्स, ऐसा कुछ नहीं है, एग्स मुर्गी से ही निकाले जाते हैं, निकालने की विधियां अलग हो सकती है, मशीनों के प्रयोग से उनको निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्स कहीं बाहर बनाए जाते हों। एग्स केवल और केवल मुर्गी के द्वारा ही दिए जाते हैं। और जहां तक आपने बात की कि उनको लोग वेजिटेरियन एग्स कह देते हैं, तो ये कुछ बिजनेस इंटरेस्ट वाले स्वार्थी लोगों ने, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एग्स का सेवन करें और उनका बिजनेस चलता रहे, तो ये झूठा प्रचार किया जाता है कि एग्स वेजिटेरियन है। सबसे पहले अनायका जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि वेजिटेरियन एग्स हमें उन्हें किस कारण कहते हैं? क्या वो पेड़ों पे लगते हैं सब्जियों की तरह, शाक की तरह, जैसे हमारा आम के पेड़ में आम लग जाता है, बैंगन के पौधे में बैंगन लग जाता है, क्या वो उस तरह पेड़ों पे लगते हैं, या आलू की तरह धरती से निकलते हैं जो हम उनको वेजिटेरियन एग्स कहें? जब वो मिट्टी से नहीं निकलते, किसी पेड़ पे लगते नहीं, और वेजिटेरियन चीजें जितनी भी हैं वो सूरज से एनर्जी लेके, धरती से पानी और वायु लेके अपना भोजन बनाती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं, लेकिन एग्स तो ऐसे नहीं निकलते। एग्स तो जैसे भी, चाहे फर्टाइल एग्स हो या नॉन फर्टाइल एग्स हो, दोनों में ही मुर्गी द्वारा ही दिए जाते हैं। और ये जो आजकल आर्टिफिशियल मेथड्स एग्स निकालने के निकले हैं, ये बिल्कुल ही अत्याचार से और अमानवीय तरीकों से भरे हुए हैं। जो हमारी संस्कृति दया करुणा वाली है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। जबरदस्ती मुर्गी से अंडे लिए जाते हैं, उनमें इस तरह के हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि मुर्गी हमें ज्यादा से ज्यादा अंडे दे, और उनको इस सिचुएशन में पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है ताकि वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई टाइट स्पेस में अपने पंख भी ना फड़फड़ा सके, और दिन रात उनको लाइट तेज रोशनी में रखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे दाना खाती रहे और ज्यादा से ज्यादा अंडे देने के लायक बने। और उनको बहुत ही, जैसा मैंने कहा, पेनफुल प्रोसेस से गुजारा जाता है इसी लालच में कि वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दें। इसलिए वो भी ठीक नहीं है, उस एंगल से भी ठीक नहीं है। और वेजिटेरियन एग्स, ये भी आजकल साइंस ने बहुत रिसर्च की है, बहुत से साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं और उन्होंने प्रूव किया है कि दुनिया का कोई भी ऐसा एग नहीं है जिसे आप निर्जीव कह सकें। जिन्हें लोग वेजिटेरियन एग कहते हैं उनमें भी जीवन होता है। अगर उनमें जीवन ना होता तो एग्स बहुत जल्दी सड़ जाते, लेकिन वो सड़ते नहीं है। तो साइंस भी इस बात को मानती है। और जहां तक ये बिजनेस इंटरेस्ट की बात है, बहुत सी कंपनियां जो इसको प्रमोट करती हैं, झूठा प्रचार करती हैं, अब उन्हीं की बात हम ले लेते हैं। पीछे किसी कंपनी ने ऐड दिया था कि वो एक ऐसा अंडा बनाने वाली है जो बिल्कुल 100% वेजिटेरियन होगा। इसका मतलब पहली बात क्या सिद्ध हुई कि अभी तक जो
वो नहीं
एग्स बाजार में है उनमें वो वेजिटेरियन नहीं है। कुछ लोग उनको वेजिटेरियन मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना टेस्ट देखना है जस्ट, और जब तो है ही नहीं तभी तो नया बनाया जा रहा है। अच्छा, फिर कुछ कंपनियों ने ये दावा किया कि उनका अंडा 100% वेजिटेरियन क्यों होगा या क्यों है। तो मैंने जरा उनके बारे में पढ़ा तो उन्होंने लिखा था कि क्योंकि वो अपनी मुर्गियों को 100% शाकाहारी भोजन देते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो अंडा निकलेगा वो भी शाकाहारी वेजिटेरियन होगा। आप देखिए कितनी हास्यास्पद ये बात है, कहीं भी तर्क से संपन्न ये बात नहीं है जो वेजिटेरियन की वो परिभाषा दे रहे हैं। ये तो ये हो गया कि जैसे वो अंडे किसी सब्जी बन जाए, अगर अंडे एक मुर्गी अंडा खा रही, मुर्गी जो अंडा देगी वो अगर अब दाना ही खाती है, मछली या कोई और चीज नहीं खा रही, तो इसका मतलब उसके अंडे अब सब्जी बन गए। कितना हंसने वाली हास्यास्पद बात है। आप भैंस को घास खिलाइए और आप कहिए कि हमारी भैंस घास खाती है इसलिए इसका मीट शाकाहारी हो गया है, क्या ये पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी अंडा वेजिटेरियन नहीं हो सकता। अंडे का बेसिक पर्पस यही है कि उससे प्रजनन होगा, उससे बच्चे आएंगे, नए चूजे बाहर आएंगे, चाहे उसमें चूजा बनने की कैपेसिटी हो उस अंडे में या नहीं हो, वो आपने कुछ तरीकों से उसकी वो कैपेसिटी खत्म कर दी, लेकिन उसमें जीवन फिर भी है। बेसिक चीज तो वो वही है कि वो एक बीज है जो बच्चा पैदा करने के लिए, चूजा बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए कभी भी हम अंडे को अपने भोजन में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो सात्विक है और ना ही उतने हेल्थ बेनिफिट्स हमें देता है। चाहे लोगों के द्वारा ये प्रचार प्रसार जरूर किया जाता हो, मान लो हेल्थ बेनिफिट्स देता भी है, तब भी एक नैतिक स्तर पर, एक माननीय स्तर पे और एक आध्यात्मिक स्तर पे हम इसे कभी भी अपने भोजन में एज ए डिश स्वीकार नहीं कर सकते।
प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं भोजन की, अब भोजन एक ऐसी चीज है जिसके हम कहीं ना कहीं अधीन होते जा रहे हैं, उसमें स्वाद एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज जब हम बात करते हैं स्वाद की, ऐसे भी कहा जाता है कि खाओ पियो और मौज करो, क्यों ना करें। आज अगर खाने से हमें खुशी मिलती है, कई बार हमारा एड्रेनल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे कहा जाता है, जो पसंदीदा चीज आप खाएंगे तो क्यों ना खाएं। आप इसका जवाब दीजिए।
बहुत सिंपल सी बात है, जब हम जानते हैं, हमें अवेयरनेस है कि ये चीज हम खाएंगे तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये चीज खाएंगे इससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा, इस चीज को खाने से हमें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आएगी, फास्ट फूड है, डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, हमें नहीं खाना चाहिए, कई तरह की बीमारियां पैदा करता है, हम जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी हम उनको खाते हैं। क्यों खाते हैं? जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों की ये अवधारणा है कि इस दुनिया में आए हैं तो किसके लिए आए हैं, तो जब तक आपका जो दिल आता है खा लो, खाओ पियो मौज उड़ाओ या खाओ पियो ऐश करो। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा उन लोगों को है जो अपनी हेल्थ के प्रति थोड़े से लापरवाह रहते हैं। अब असली मौज किस चीज की है, पहले ये समझना हमें जरूरी है। क्या जो सामने आए, जो हमें अच्छा लगे, जो जीभ को टेस्टी लगे, उसको हम खाते जाएं तो हमें सदा काल की मौज मिलेगी, या बाद में अभी मौज मिलेगी थोड़ी देर जब तक जीभ का स्वाद है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये सोचना जरूरी है। क्योंकि असली मौज क्या है, अभी आपने वो चीजें खा ली जो नहीं खानी चाहिए, जो आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी नहीं है और एंगल से भी सही नहीं है। कल को जब आप बीमार पड़ेंगे, आपके आंखें दुखने लग जाएंगी या उसकी वजह से आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, हाथ पैर कानों कहीं दिक्कत आ जाएगी, तो वो मौज रहेगी या आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपके लिए किडनी फेलर हो जाए, कोई और दिक्कत आ जाए, कैंसर हो जाए, तब आप उसको मौज कहेंगे
जी।
सही मौज वो है, सही ऐश वो है जब हम ऐसा खाना खाएं, डिसिप्लिन में रह के जीवन को बिताएं, जो अभी भी हम भोजन को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें और बाद में भी वो भोजन हमारे लिए दवा का काम करे, हमारे लिए फूड ही एक मेडिसिन बन जाए और कई बीमारियों से हमें दूर रखे। जहां तक आपने बात कही कि ये जो गुलामी है, टेस्ट की गुलामी, हम अपने स्वाद के अधीन होते जा रहे हैं, आदतों के मजबूर हो गए हैं, चाहते हुए भी नहीं छूटता, क्या किया जाए इसके लिए? सिंपल सी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि मुझे ये चीज खानी है, मैं शुगर का पेशेंट हूं, अब गुलाब जामुन सामने आ गया, कैसे छोड़ू, छोड़ता ही नहीं, उस वक्त हम अपने आप को समझा दें कि मैं इस दुनिया में किसके लिए आया हूं, क्या खाने पीने के लिए आया हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। कहा भी जाता है कि इंसान इस दुनिया में जीने के लिए खाता है, जो समझदार और बुद्धिजीवी इंसान है वो जीने के लिए खा रहा है, ना कि खाने के लिए जी रहा है। हम कोई कुंभकर्ण नहीं है जो केवल उनका एक ही पर्पस था कि हमने सोना है और सो के जब उठ गए तो बहुत सारा खाना है। नहीं, हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए भोजन कर रहे हैं। भोजन एक जस्ट फ्यूल है, एक ईंधन है जो हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है, हमें काम करने में मदद कर रहा है। जिस तरह हर गाड़ी का ईंधन फ्यूल लग होता है, कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, कुछ गाड़ियां डीजल से चलती हैं। तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी अगर कहे कि मुझे पेट्रोल तो ठीक नहीं लग रहा, मुझे आजकल डीजल अच्छा लगता है, डीजल बहुत टेस्टी होता है, तो मुझे डीजल दे दिया जाए तो मैं ज्यादा अच्छी रहूंगी, तो उससे क्या होगा, क्या वो गाड़ी चल पड़ेगी?
नहीं,
और ही खराब हो जाएगी। उसी तरह ये शरीर भी हमारा एक गाड़ी की तरह है और हमारा पेट एक उसकी पेट्रोल की टंकी की तरह है, मुंह ओपनिंग पॉइंट है जहां से पेट्रोल अंदर जाता है। अब आप कहें कि मुझे वो खाना है जो टेस्टी है, लेकिन मेरी बॉडी के लिए वो प्रिस्क्राइब ही नहीं है, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है, या वो खाना ऐसे भी ठीक नहीं है,
बिल्कुल,
तो उसको मैं खा रहा हूँ
तो वो भी हमारे लिए
हानिकारक है और हमारे लिए अनसुटेबल है।
बिल्कुल,
तो हम अपने लिए उस वक्त प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी।
अगर हम कैटेगराइज कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा हेल्दी रहना। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर साहब। जब हम बात करते हैं भोजन की, भोजन में आज हमने कई सारे एस्पेक्ट सीखे, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लेंगे तो जरूर हम हेल्दी बन पाएंगे। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों आज हमने क्या जाना, सबसे पहली बात जो हमने जानी वो ये थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो उतना ही हानिकारक होता है जितना कि कोई भी तरीके का एडिक्शन। अगर आप बात करें नॉन वेजिटेरियन फूड की, वो बिल्कुल भी आपके लिए सेहतमंद नहीं है, उसके कई सारे हेल्थ के हजार्ड्स भी हैं। साथ ही साथ साथ अगर हम बात करेंगे एग्स की, एग्स भी आप जीव जंतुओं को मारकर खा रहे हैं, उसकी जो बीज है उसी को मारकर और फिर आप उसे खा रहे हैं, तो आप एक जीव की हत्या करके उसकी लाश खा रहे हैं, ये भी आपके लिए हानिकारक है। और सबसे मेन बात, आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ सबसे बेस्ट और हेल्दी होने लग जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।